हम सभी आदरणीय गीता दीदी जी का स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। वैसे तो भगवान की बगिया का हर पुष्प बहुत कीमती है। कुछ पुष्प ऐसे होते हैं जो परमात्मा से विशेष प्यार तो पाते ही हैं, साथ साथ अतिरिक्त क्षमता भी प्राप्त कर ही लेते हैं। उस अमूल्य क्षमता को इस बेहद के यज्ञ हेतु प्रस्तुत करना जिसमें की कोई इच्छा ना हो, ऐसी विशेषताओं की धनी है आदरणीय गीता दीदी जी, जो हम सभी के समक्ष उपस्थित हैं। हम सभी एक हाथ की ताली से आपका अभिवादन करते हैं। कहते हैं, होनहार वीरवान के होत चीखने पात, या कहें होनहार बच्चे के पैर पालने में ही दिख जाते हैं। आपने इस अलौकिक जीवन में ज्ञान को 1969 में मात्र 14 वर्ष की अल्पायु में ही परख लिया था और सन 1972 में आपने मैट्रिक में गुजरात में प्रथम श्रेणी में पास किया, गुजरात टॉप किया था आपने 10th क्लास में, और आपने अपना हाथ ईश्वर को सौंप दिया। आप विशेष कुमारियों की जो टीचर्स ट्रेनिंग होती है उसके भी निमित्त हैं। अनेकानेक आपने योग शिविर कराए, गीता के भगवान को सिद्ध करने में आपने विशेष कुशलता प्राप्त की है। बिजनेस विंग की आप मधुबन कोऑर्डिनेटर हैं और आज हम आपकी ओजस्वी वाणी द्वारा लाभान्वित होंगे। विषय है दीदी जी का निमित्त निर्माण निर्मल जीवन। आदरणीय गीता दीदी जी,
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ये तीन बार ओम शांति बोलना किसने सिखाया? हाँ, दादी जानकी जी ने। पहली ओम शांति माना, मैं कौन? स्वयं को जानना, अपने स्वमान को याद करना। और दूसरी बार ओम शांति माना, क्या है इसका अर्थ? मेरा कौन? मैं बाबा से कंबाइंड हूं, भगवान मेरा साथी है। और ये दोनों स्पष्ट रहता है, मैं कौन और मेरा कौन, तो तीसरी बार ओम शांति माना, मुझे क्या करना है? अपने पार्ट के बारे में क्लियर हो जाता है। इस वर्ल्ड ड्रामा में मुझे क्या करना है? दादी अंग्रेजी में भी बताती थी कि पहली ओम शांति माना, लाइट आ जाती है, हमें स्पष्ट हो जाता है, ज्ञान का प्रकाश मिल जाता है, हम देही अभिमानी बन जाते हैं। और दूसरी ओम शांति माना, माइट मिल जाती है। बाबा की शक्तियां हमारे में आ जाती हैं। और तीसरी ओम शांति माना, हमारे हर कर्म राइट हो जाते हैं, हम हर कर्म सही करने लगते हैं। तो ये जो मंत्र दादी जी ने दिया है, बाबा ने सिखाया है, वो हमें रोज याद करना है। ये वर्ल्ड ड्रामा जिसमें बाबा भी डायरेक्टर हैं, क्रिएटर हैं और प्रिंसिपल एक्टर हैं, तो बाबा हमें सिखाते हैं कि हमें अपना पार्ट अच्छी रीति प्ले करना है। हम इस ड्रामा में मालिक नहीं हैं, परंतु एक्टर है। शरीर हमारी ड्रेस है और वैरायटी रोल्स हमें प्ले करना है। जैसे हीरो एक्टर सभी पार्ट अच्छी रीति प्ले करते हैं, कोई एक्टर हीरो एक्टर कोई फिल्म में पुलिस इंस्पेक्टर है, कोई में पागल का रोल प्ले करता है, कोई कुली का रोल प्ले करता है, पर हम ये नहीं कहते हैं कि अमिताभ बच्चन कुली है। ऐसा कहेंगे? हाँ, नहीं, उसने कुली का रोल प्ले किया। तो इस वर्ल्ड ड्रामा में हर एक हीरो एक्टर वैरायटी रोल प्ले करते हैं, परंतु हर रोल बहुत अच्छी रीति प्ले करते। वो कुली नहीं बन जाता है, परंतु कुली का रोल प्ले करता है। तो इस वर्ल्ड ड्रामा में हम हीरो एक्टर बनते हैं और हर युग में हर जन्म में हम वैरायटी रोल प्ले करते हैं। तो ये हमारे रोल्स हैं, शरीर हमारी ड्रेस हैं, और वैरायटी युग में जन्म में हम ये रोल प्ले करते हैं। तो बाबा ने आजकल में ही ये पाठ पढ़ाया कि बाबा करण हार हैं और करावन हार भी हैं, क्योंकि ब्रह्मा द्वारा संपूर्ण सत्य ज्ञान देकर और संपूर्णता का रोल प्ले करता है, संपूर्णता का रोल प्ले करवाता है। इसलिए बाबा का नाम है करण करावन हार। बाबा करण करावन हार है, खुद करता भी है और कराता भी है। तो ये रोल हमें भी सीखना है। संगम युग में बाबा ने ब्राह्मण बनाया, बाबा ने हमें ब्रह्मा मुख वंशावली सच्चे ब्राह्मण बनाया और बाबा हमसे विश्व कल्याण का कार्य कराते हैं। बाबा खुद कल्याणकारी हैं और हमें भी निमित्त बनाकर सारे विश्व का कल्याण कराते हैं। तो हम जानते हैं कि हम करणहार हैं। बाबा के संदर्भ में बाबा करणहार हैं और हम करावनहार हैं, पर शरीर के साथ हम करावनहार हैं, शरीर करणहार है। शरीर द्वारा, कर्मेंद्रियों द्वारा हम करते हैं। इसी प्रकार इस संगम युगी ब्राह्मण जीवन में बाबा हमसे कराता है और शरीर द्वारा करावनहार बनाता है। तो हम निमित्त है, कोई भी सेवा करते हैं निमित्त बनकर करते हैं। निमित्त बनकर कराते हैं तो हमारे में मैंपन नहीं आएगा, मेरापन नहीं आएगा। क्योंकि जो भी गुणों की देन है वो परमात्मा देन है। बाबा गुणों का भी दिव्यकरण करता है, गुणों में भी परफेक्शन लाता है। तो हर गुण को बाबा करणहार हैं, ये गुण हमारे में बाबा दिव्यकरण लाते हैं। जैसे भक्ति में अवगुणों का भी दिव्यकरण करते हैं, कई भाई बहने हिंदू है पर मांसाहार भी करते हैं, कहते हैं ये तो देवी जी का प्रसाद है, ये भगवान पर चढ़ाई हुई बलि है, तो मांसाहार को भी प्रसाद कहते हैं, परंतु बाबा संगम युग में गुणों का दिव्यकरण करते हैं। प्रसाद भी हम नहीं खाते हैं क्योंकि बनाने वाले पवित्र नहीं हैं, योगी नहीं हैं। इसलिए प्रसाद को भी हम स्वीकार नहीं करते, ले लेते हैं और बाहर किसी को दे देते हैं। हम यही कहते हैं कि हमारे पास ज्यादा था इसलिए आपको दे दिया। कोई दीवा जगाते हैं, वो कहते हैं आरती लो, हम ऐसे ही हाथ घुमा लेते हैं, परंतु आरती को स्वीकार नहीं करते क्योंकि दीवे जगाए तो पतितात्माओं ने। हम ज्ञान का दीप जलाते हैं और आत्मा की ज्योति जगाते हैं। हम मस्तक में चमकते हुए सितारे हैं, हर घड़ी स्मृति की ज्योत जगी रहती है। तो हम निमित्त हैं, हर कार्य में बाबा कराता है, हम करते हैं ऐसा नहीं कहेंगे। बाबा हमसे कराते हैं, तो हम निमित्त मात्र है। हम अपने गुण नहीं गाएंगे, बाबा ही हमसे कराते हैं, बाबा ही हमसे पार्ट प्ले करवाते हैं। हमें पता है कि हम करावट हार रहे, बाबा करण हार है। इसलिए अगर आत्मभिमानी बनना है तो हमें ये पाठ पक्का करना है। हमें दिन भर ये अभ्यास करना है कि बाबा करावन करण हार रहे, हम उनके बच्चे, वैरायटी कर्मों के लिए, सेवा के लिए बाबा हमें निमित्त बनाता है। करावन हार बनाता है, ऐसे ही दूसरा अभ्यास दिन भर करना है अशरीरीपन का। मैं आत्मा करण हार हूं और शरीर द्वारा करता हूं, ये कर्मेंद्रियां कर्म करती है और मैं आत्मा करावनहार हूं। तो बाबा के संदर्भ में हम करावनहार हैं और बाबा करणहार है, पर मैं आत्मा शरीर के संदर्भ में मैं आत्मा करणहार हूं, कर्मेंद्रियां करण करावनहार है। कर्मेंद्रियों के द्वारा हम इतने श्रेष्ठ पुरुषार्थ और श्रेष्ठ कर्म करते हैं, तो इसमें हमें मेरापन या मैंपन नहीं आता है। मैंपन और मेरापन तब आता है जब हम अपने को आत्मा नहीं समझते। हम करणहार आत्मा है, मैं आत्मा आंखों से देखती हूँ, मुख से बोलती हूँ, कानों से सुनती हूँ, परंतु हम ये नहीं समझते हैं कि मैं कान हूँ, आँख हूँ, मुख हूँ, नहीं। मैं करती हूँ, करने के लिए कर्मेंद्रियां हैं। तो मैं करणहार हूं और ये कर्मेंद्रियां करावनहार है। तो निमित्त भाव, तो न मैंपन आएगा न मेरापन आएगा, न मैंपन आएगा न मेरापन आएगा। हम इस ब्राह्मण परिवार में भी कभी ऐसे अभिमान में नहीं आएंगे। हमेशा निमित्त भाव में रहेंगे। तो हमारे मन का सूक्ष्म भाव निमित्त भाव रहे। फिर है निर्माण भावना, नम्र भावना। हम कितनी भी सेवा का निमित्त बने, परंतु अगर निमित्त भाव है तो निर्माण भाव जरूर बने रहेगा। हमारे में कर्तापन नहीं आएगा। हम नम्रता से, निर्माण भावना से हर कार्य करेंगे। वैरायटी हरेक में विशेषता है। माताएं बहुत अच्छा भोग बनाएगी, ब्रह्मा भोजन बनाएगी, और भाई सब प्रोग्राम की तैयारी करेंगे। तो जिसमें जो विशेषता है वो इस ईश्वरीय कार्य में लगाएंगे और बहुत अच्छी रीति अपना अपना बाबा के द्वारा मिला हुआ कार्य करेंगे। परंतु उसमें भी नम्रता रहेगी। न माताएं कहेंगी हमने भोग बनाया, हमने ब्रह्मा भोजन बनाया, नहीं, ये आपकी कला है, विशेषता है, घर परिवार में भी बनाने का अभ्यास है। तो बाबा के कार्य में अगर आप अपनी ये विशेषता लगाएंगे तो सब कहेंगे कि आपने बहुत अच्छा भोग बनाया, ब्रह्मा भोजन बनाया। अगर भाइयों में ऑफिस वर्क करने का, कार्ड बनाने का, कार्ड बांटने की कला है, तो आप ऐसे नहीं कहेंगे कि मैंने ये किया है। लौकिक में भी आप करते हैं, वही कला अगर बाबा के कार्य में लगाई और बाबा का सेवा कार्य किया तो बहुत अच्छी तरह आपने किया। भाई ये नहीं समझेंगे कि हमने कार्ड बनाया, हमने बैनर बनाया, हमने अनेकों को बांटा, नहीं, हर एक अपना अपना कार्य करेंगे। हॉल सजाया, तो ये हर एक का अपना अपना कार्य है। निर्माणता का अर्थ है नम्रता। हम सदा नम्रता बनते जाएंगे। जैसे पेड़ पर फल उगते जाते हैं तो उनकी डालियां झुकती जाती हैं। जितनी विशेषता हमारे में बढ़ती जाएगी, जितने अच्छे गुण हमारे में धारण होते जाएंगे, हम झुकते जाएंगे, हमारे में नम्रता आएगी। हम ये नहीं समझे कि मैं ही क्यों झुकूं, हमारा झुकना नम्रता से कार्य करना है। अहंकार नहीं दिखाना है, पहले अपने रूप का, पढ़ाई का, पोस्ट पोजीशन का, धन का अहंकार रहता था, पर बाबा ने अपना बनाकर ये पोस्ट पोजीशन, रूप, पढ़ाई, धन, इन सब का अभिमान रहता था, पर बाबा के बन गए इन बातों का अभिमान चला गया। अब हमें ज्ञान का, योग का, सेवा का अभिमान रहता है, परंतु हमें इनका भी अभिमान नहीं करना है। ज्ञान बाबा ने दिया है, भक्ति में गुरुओं से शास्त्रों से कहां ज्ञान मिला। बाबा ने सत्य ज्ञान दिया, तो बाबा ने ज्ञान दिया ना, हमारे में समझ आई, बुद्धि आई, वो बाबा से आई है। बाबा ने हमें दिव्य बुद्धि दी है, बाबा रोज ज्ञान देता है, बाबा हमें रोज समझाता है, केवल सुनाता नहीं है, बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। तो हमारे में समझ आती है, जिससे राइट रॉन्ग परखने की शक्ति आती है। सही क्या है हम निर्णय कर पाते हैं, तो ये परख शक्ति, निर्णय शक्ति, समझने की शक्ति, ये सब कुछ बाबा हमें देता है। जैसे बाबा को सद्ज्ञान मिला, समझ में आया, बाबा में देहत का वैराग्य आया, बाबा ने लौकिक धंधा छोड़ दिया, तो ये वैराग्य की शक्ति भी बाबा के ज्ञान से आती है। वैराग्य अंदरूनी होता है, और जितना जिगरी वैराग्य आएगा उतना हम त्याग सहज कर सकेंगे। जब तक वैराग्य नहीं, दुख से कोई संसार छोड़ नहीं सकता है। दुखी तो बहुत है पर वैरागी नहीं है, इसलिए वैराग्य से त्याग होता है। हम अपना तन मन धन मन वचन कर्म बाबा के कार्य में लगाते हैं, ये भी एक पॉजिटिव त्याग है। हमें सिर्फ विकार नहीं छोड़ने हैं, अवगुण नहीं छोड़ने हैं। आज की मुरली में भी बाबा ने बताया ना, किसी को दुख देना, ग्लानी करना, निंदा करना, चंचलता करना, ये स्वभाव नहीं होना चाहिए। तो ये नेगेटिविटी का त्याग किया। फिर हम सेवा के लिए, बाबा के सेंटरों को चलाने के लिए अपना तन मन धन सफल करते, तो ये भी हमारा त्याग है। तो संगम युग में बाबा के लिए, सेवा के लिए हमें मन वचन कर्म तन मन धन संबंध संपर्क और समय बेहद में लगाना है। जिसके पास जो होगा उसका वो त्याग करेगा, धन होगा धन लगाएगा, कला होगी कला लगाएंगे, समय होगा वो समय लगाएंगे। जब ज्ञान सरोवर बना, शांतिवन बना, तो हजारों कार सेवक आते थे, कर्मणा सेवा करने वाले आते थे, कईयों ने अपनी कला लगाई, जिनको इलेक्ट्रिक सिटी का वर्क आता था उन्होंने अपनी वो कला लगाई, जिन्हों को प्लम्बरिंग आता था उन्होंने अपनी वो कला लगाई, जिनको फर्नीचर बनाना आता था उन्होंने वो बनाया, अपनी स्किल्स लगाई, लौकिक कलाएं लगाई, और जिन्हों के पास धन था उन्होंने धन लगाए। तो सर्व के सहयोग से ये सुखमय संसार बन गया। तो बाबा का कार्य सर्व के सहयोग से चलता है, यहां किसी का नाम नहीं है, किसी की महिमा गाने की बात नहीं है, बूंद बूंद तालाब भरता है। दादी ने ऐसी भी योजना बनाई थी कि एक एक रुपया सब डालेंगे तो सर्व के सहयोग से रोज जितना खर्च होता था उससे भी ज्यादा इकट्ठा होता था। ये बाबा के बच्चों का सहयोग की भावना रही। किसी एक पर थोपा नहीं जाता है। यहां गरीब भी अपना रुपया देते हैं, मध्यम वर्ग भी अपना सहयोग देते हैं, और धनवान भी अपनी पूरी रकम से मदद करते हैं। ये दादी ने बाबा ने क्यों सिखाया? क्योंकि सर्व के सहयोग से सुखमय संसार बनता है। और ये भी देखा गया कि जैसे ही कैंपस तैयार हुए, संभालने वाले सेवाधारी भी आ गए, साधन भी आ गए, और प्रोग्राम करने वाले भी आ गए। तो देखो बाबा की याद में, बाबा की मदद से जो काम होते हैं वो सर्व के सहयोग से बहुत अच्छे चलते हैं। सबको बाबा से प्यार है, बाबा के कर्तव्य से प्यार है, बाबा के स्थान से प्यार है। तो बहुत दिल से हर कोई मदद करता है और आज तक भी चल रहा है। देखो बाबा का अव्यक्त पार्ट जब पूरा हो गया 2017 में, December 31 लास्ट बाबा का मिलन हुआ, लेकिन उसके बाद भी हर जोन अपने भाई बहनों को लाते रहे, इसलिए आज तक भी ये भरपूर चल रहा। कहीं सोचते थे कि बाबा तो आते नहीं हैं, दादियां तो अब है नहीं, कौन आएगा, पर हम अपनी आंखों से देख रहे हैं कि नए पुराने सब आते हैं। वीडियो मिलन से भी बहुत अच्छा अनुभव करते हैं, नए नए भाई बहने आते हैं, बहुत सुंदर अनुभव करके जाते हैं। तो ये किसकी कमाल है? बाबा की कमाल है। बाबा ही ऊपर बैठकर परम धाम से नए बच्चों को भी बहुत सुंदर अनुभव कराते। तो ये हैं बाबा, बाबा मम्मा, दादियां, दीदियां, भल काफी तो शरीर छोड़कर चले गए, परंतु बाबा अनुभव करा रहे हैं। बाबा ने कहा है, अंत में ब्रह्मा बाप का साक्षात्कार होगा। क्योंकि निमित्त वो ही बना ना, यज्ञ स्थापने के लिए, यज्ञ की स्थापना करने के लिए, यज्ञ को भरने के लिए बाबा ने सब कुछ किया। और अभी भी ऐसी लगन वाले भाई बहने आ रहे हैं कि उनकी तीव्र लगन से वे अपना तन मन धन लगा रहे हैं। उन्हों में कोई अभिमान नहीं है, दादी ने कहा था टीचर्स भट्टी में कि आप सबको दो प्रकार के भाई मिलेंगे, एक सेंटर चलाने वाले भाई बहने मिलेंगे जो बहुत तन मन धन लगाएंगे, और एक ऐसा भाई मिलेगा जो ब्राह्मणी को सीधा चलाएगा। ऐसे माथा खाने वाले, हर बात में रूठने वाले, नुक्स निकालने वाले, हर सेंटर में ऐसा एक भाई होगा जरूर। हाँ, ठीक है ना टीचर, ऐसा अनुभव है ना आप सबको? पर ब्राह्मणियों को, निमित्त आत्माओं को थकना नहीं है। ऐसे विघ्न डालने वाले भी अपने आप फिर समझ जाते हैं और अपना ठीक से कार्य करने लगते हैं। बस हमें बाबा बाबा करना है, बाबा को याद करके सेंटर चलाना है, तो अपने आप वो बदल जाएंगे और विघ्नकारी से मददगार, सहयोगी बन जाएंगे। हमारी धीरज, सहन शक्ति, शांति की कामना, शुभ भावनाएं ऐसी आत्माओं को बदल देंगे। तो हमें नम्रता में रहना है। और तीसरा है निर्मल जीवन। हमारे स्वभाव, संस्कार और वाणी, ये निर्मल हो। हमें आखिर तो संपूर्ण निर्विकारी बनना है, तो हमें अपने मन, वचन, कर्म, स्वभाव, संस्कार, कर्तव्य, मतलब जीवन हमें निर्मल बनाना है। जब निमित्त भाव और निर्माण भावना से कुछ भी करने पर हमारे में मैंपन नहीं आएगा, मेरापन नहीं आएगा, अहंकार नहीं आएगा, कर्तापन नहीं आएगा, तो जरूर हमारे में शुद्धि रहेगी। पवित्र तो हम बन ही जाते हैं, वो तो हमारे ब्राह्मण जीवन का पहला पाठ है। इसलिए पवित्रता के लिए ब्राह्मणों को कोई मेहनत नहीं है। हमें समझ आ जाता है, लक्ष्य बन जाता है कि हमें बाप समान ज्ञान का सागर और पवित्रता का सागर बन जाना है। जरूर आप सभी जो मधुबन में आए हैं, पवित्रता में पक्के होंगे। ये ब्राह्मण जीवन की मूलभूत धारणा है, फाउंडेशन है। और जब फाउंडेशन पक्का होता है, तो फिर अन्न शुद्धि, व्यसन मुक्ति भी हो ही जाती है। हम शुद्ध भोजन, सात्विक भोजन इसलिए खाते हैं कि बाबा ने हमें सिखाया है। और जब अन्न शुद्ध खाते हैं तो स्वाभाविक है कोई व्यसन हमें रखने ही नहीं है। सभी भाई बहनों ने अपने व्यसन छोड़ दिए हैं। कितना भी कड़ा व्यसन हो परंतु हम देवता बनने वाली आत्माएं उनको स्वीकार नहीं कर सकती हैं। सिगरेट, बीड़ी, शराब, तंबाकू, गुटके, इस प्रकार के जो भी व्यसन है हमें छोड़ देने। अभी आएंगे डॉक्टर बनारसी भाई, जो सारे भारत को नशा मुक्त करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। वो खुद हमारे जितने भी संगठन के शिविर के कार्यक्रम होते हैं ये जरूर वहां हाजिर हो जाते हैं। तो नशा मुक्त भारत हमें करना ही है। जब दादी जी थे तो दादी जी माउंट आबू को भी व्यसन मुक्त बनाना चाहते थे। माउंट आबू के साधु संतों को इकट्ठा करके सबको उन्होंने कहा था कि यहां शराबबंदी कर दो। तो इस प्रकार से अन्न शुद्धि, ब्रह्मचर्य, दिव्य गुणों की धारणा और सत्संग माना नित्य ज्ञान और योग का अभ्यास, इन चार नियमों का पालन करके हमें सच्चा ब्राह्मण बनना है, ताकि हम ब्राह्मणों को कहीं भी वो देखे हमारी जीवन की धारणाओं को देखे तो वो भी अपने में ये धारणा करने की लक्ष्य ले, हिम्मत रखे और उनके अंदर भी उमंग उत्साह आवे। हमारा धारणाओं को देखकर उनको प्रेरणा मिले, उनको लक्ष्य बने। हमारे भाई बहने यहां भी हर कैंपस में घूमने जाते हैं और माउंट आबू में भी घूमने जाते हैं, पर सफेद वस्त्रधारी सच्चे और पक्के ब्राह्मणों को देखकर इन्हों में भी लक्ष्य बनता है। जब ऐसा आज की सभा में पुराने भी आए हैं, नए भी आए हैं। कईयों का व्यसन छूटा होगा, कईयों का नहीं छूटा होगा। तो बनारसी भाई जी अपने अभियान के बारे में बताएंगे, ताकि और प्रतिज्ञा भी कराएंगे, ताकि जिन्हों का नहीं छूटा है वो भी छोड़ दे। ओम शांति।
ओम शांति। हम 5 मिनट ही आपके योग का टाइम लेंगे। हमको पता है कि योग करना है। ये वो महान सभा है, इतना बड़ा सभा दुनिया में कहां भी ब्रह्मचारियों का नहीं होगा जिनका कनेक्शन परमात्मा के साथ है, जिनका संबंध परमात्मा के साथ है। संबंध ही नहीं है, बल्कि हर पल हर क्षण परमात्मा इनके साथ रहते हैं और ये परमात्मा के साथ रहते हैं। ये दुनिया में कहां भी नहीं है, चाहे कितने बड़ा तपस्वी क्यों न हो, हिमालय में पूरा जीवन क्यों न बिताया हो, लेकिन ऐसे तपस्वी दुनिया में नहीं होंगे। तो इन तपस्वियों के द्वारा अगर एक बोल निकलता है जे ये हमारा भारत व्यसन मुक्त होगा, तो सचमुच आपका महावाक्य सत्य होगा और एक दिन भारत व्यसन मुक्त होगा। तो 4 मार्च को जाने वाले 2 मिनट खड़े हो जाएं, 2 ही मिनट और आपका टाइम लेंगे। 4 मार्च को भारत सरकार के सोशल जस्टिस वेलफेयर डिपार्टमेंट के साथ एमओयू हुआ 2023 में। आज लगभग 20 मास हो गया है। 20 मास में 30 लाख लोगों को एजुकेट किया गया है। 28 लाख लोगों से प्लेज लिया गया है। ये कौन करा रहा है? बाबा की प्रत्यक्षता के लिए हो रही है। स्कूल में हम जाते हैं, हमारी 2 गाड़ियां यहाँ खड़ी है नशा मुक्ति के, कुंभकर्ण लेटा हुआ आप देख रहे होंगे। स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, यूनिवर्सिटी में जाते हैं, गांव में जाते हैं, सब इकट्ठे हो जाते हैं बिना बुलाए कुंभकर्ण को देखने के लिए। वो लाइव है और उसको देखने के लिए, और 5 मिनट में, आधा घंटा में आप 10,000 को संदेश दे करके चल देते हैं। बाबा ने कहा था कि बच्चे जन जन को संदेश देना है, क्योंकि हम घर चले हम सब, तो कोई बाबा के आगे कोई आत्मा आके खड़ी न हो जाए कि बाबा आप आए तो सही, लेकिन हमको तो पता ही नहीं लगा, हमको संदेश नहीं मिला। तो हमको संदेश देना है, तो इसलिए एक बहाना है जन जन को संदेश देने के लिए। अब ये सेवा देख करके नारकोटिक डिपार्टमेंट, सीधा होम मिनिस्ट्री से कनेक्शन उसका है, उन्होंने 2 दिसंबर को स्वतंत्र भवन में दिल्ली में उन्होंने साइन कराया कि नहीं हम भी आपके साथ साइन करना चाहते हैं, और वहां साइन हुआ। और अब जगह जगह से हमको फोन आता है कि अपने डिस्ट्रिक्ट के हेड को बताइए, हम वहां जाकर उनके साथ मीटिंग करें और प्रोग्राम बनाएं और सेवा करें। हम सरकार के पीछे जाते थे, अभी सरकार बाबा के बच्चों के पीछे है। तो इसलिए हम अधिक टाइम नहीं लेंगे, आप सब 1 मिनट खड़े हो जाएं जो बैठे हैं, और हम संकल्प करेंगे पावन स्थान पर। परमात्मा कितने बार इस स्टेज पर आए हुए हैं, हजारों भाई बहनों को बाबा का संदेश मिला है इस स्थान से, तो इस स्थान पर हम संकल्प करेंगे, वो पावरफुल संकल्प होगा और वो सत्य होगा। तो मैं प्रतिज्ञा करता हूं बाप दादा के सामने, अपने दादियों के सामने, कि भारत को नशा मुक्त बनाकर के ही रहेंगे। भारत सरकार के जो नियम बनाए गए हैं उसको पालन करेंगे, प्रकृति का सुरक्षा करेंगे। मेरा भारत व्यसन मुक्त भारत, मेरा दिल्ली व्यसन मुक्त दिल्ली, मेरा गांव व्यसन मुक्त गांव। ओम शांति, ओम शांति। कल सवेरे मुरली क्लास के बाद आप लोग जाते हैं नाश्ते पर, तो भाइयों से रिक्वेस्ट है कि ये बहनों के साइड से चलें, तो यहाँ शक्ति स्तंभ दादी जानकी जी का स्थान से एवर हेल्दी तक आपको कष्ट नहीं देंगे, सर्दियों में बहुत आपको चलाएंगे नहीं। यहाँ से लाइन में चलना है, सबका फोटो आएगा, लाइव जाएगा सरकार के नोटिस में, कल का कल ही चला जाएगा। तो ये बहुत बड़ी सेवा है, भाइयों से रिक्वेस्ट है, भाई सहयोग देंगे ना, पक्का? ठीक है, तो कल क्लास के बाद इस रोड से हम लोगों को चलना है, और हमारे भाई बहने सेवाधारी सबके हाथ में झंडा देंगे, बैनर देंगे, और मौन में चलना है, वाइब्रेशन देना है। ओम शांति। अब हम सब योग करेंगे पावरफुल कि हमारा भारत व्यसन मुक्त हो जाए।